मतलब कुंभ को बनाने के पहले उस कुंभकार के मन में एक भाव बना कि मुझे कुंभ को कैसा रूप प्रदान करना है। क्योंकि जैसे शिल्पकार होता है, कोई मकान बनाने वाला होता है तो क्या करता है, पहले मन में एक नक्शा बना लेता आइडिया, अब उस प्रकार से मुझे उसका निर्माण करना। तो सबसे पहले कुंभ कहाँ पर आया, उसके उपयोग में, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। कुंभ तो जब बनेगा बनेगा, लेकिन उसके उपयोग में अभी आ गया मुझे ऐसा कुंभ बनाना है। और प्रासंगिक प्राकृत हुआ ज्ञान ज्ञाकार रूप में, परंतु उसके उपयोग में कुंभ का आकार था, वैसा बनाने के लिए उसने अपना यात्रा प्रारंभ की। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार से उभय कर कुंभाकार हुए। प्राथमिक क्षोभन हुआ माटी के भीतर अपूर्व पुलकन, आत्मीयता का अच्छा लगा। लोग रह रहकर तरह तरह की माटी की मंजिल छवियां उबर उबर कर ऊपर आ रही, क्रम क्रम से तरंग क्रम से रहस्य के घूंघट में निहित थी जो चिर से। जैसे शिल्पी ने मन बनाया तो मन के अनुरूप तन भी हो गया। किसी भी कार्य के लिए पहले मन बनाना पड़ता है, सभी तो उसका साथ दे ही देता है। तो शिल्पी ने मन बनाया तो तन उसके अनुरूप हुआ और अपने हाथों को उसने कुंभ का आकार दिया। वो माटी का लौंदा जो पड़ा था उसको हाथ लगाया, जैसे प्रथम सुगंध हुआ और माटी के भीतर अपूर्व पुलकन। कुंभकार ने जैसी माटी का स्पर्श किया, माटी के भीतर अपूर्व आनंद की उत्पत्ति हुई। पुलकन माने आनंद या पुलकित हो गई वह माटी, और उसमें जो अभी तक जो छवियां छुपी हुई थी ऐसी वो क्रम क्रम से ऊपर आ रही हैं, मानो कि रहस्य के घूंघट में जो छुपी हुई थी ऐसी पर्याय उसकी प्रकट होने लगी। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। रहस्य को सूंघने की कड़ी प्यास उसी ही लगती है जो भोगता है, संवेदनशील होता है। यह काल का कार नहीं है। जिसके निकट पास करण यानी करण ही होता है, वह परता कुछ ना करता ना कराता। जिसके पास करण शरण ही होता, वह स्वयं ना चलता पद भर भी, ना ही चलाता पर को। काल मिस्त्री है ना, क्रय विक्रय से परे है वह। अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा। अब यहाँ पर कुछ लोग काल को ही कर्ता मानते, काल में हमारा कार हो गया भैया, काल लड़की आ गई, हमारा समय ठीक नहीं चल रहा था, अच्छा समय आ गया तो काम हो गया। तो काल यहाँ पर स्वयं चलता नहीं है, ना दूसरों को चलाता है, अभी तो यहाँ पर जो संवेदनशील भोक्ता पुरुष होता है वही पुरुषार्थ करके अपने भाग्य का निर्माण करता है। मात्र काल पर ही आधारित नहीं है, क्योंकि काल तो निष्क्रिय है, एक स्थान पर उदासीन है, लेकिन काल की उपस्थिति के बिना भी कार्य नहीं होता। तो यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। काल ने नहीं किया किंतु काल में कार्य हुआ। चार बज गए इसलिए क्लास लगी, ऐसे में हमने क्लास लगाई तो चार बजे की उपयोगिता हो गई, सवा चार बजे से लगाई। तो उसका कारण है काल ने हमें प्रेरित नहीं किया, काल में तो कार्य हुआ किंतु काल के द्वारा कार्य नहीं हुआ। वो तो उदासीन अपने आप में बस निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता। हाँ भैया सवा चार बज गए यानी क्लास शुरू हो गई, तो काल ने क्लास नहीं लगाई, क्लास लगाने वाले अपन ने काल में लगाई। कि काल नहीं होता तो भी ये कार्य संभव नहीं होता। आदमी पक्ष ऐसा है जो कि काल लगती तो अरे हमारी काल लगती नहीं आई, इतना पढ़ रहे हैं स्वाध्याय कर रहे, आप भिक्षा क्यों नहीं ले रहे, बोले महाराज काल लगती नहीं आई। अभी अच्छा, तो काल लगती कोई ऐसी वस्तु है जो आपको भिक्षा दिला दे, लेना तो आपको ही है। अब पुरुषार्थ करोगे तो काल लगती आ जाएगी, और नहीं करोगे तो काल कभी भी तुम्हारे लिए सत्कार के लिए प्रेरित नहीं करता। एक ही काल में एक व्यक्ति मोक्ष जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति नरक जा रहा है, काल तो वो ही है। अब कैसे हम व्यक्ति मान रहा कौन से मुहूर्त में काम करे तो मुहूर्त बता दो, उसी मुहूर्त में बुरा भी काम हो रहा है उसी मुहूर्त में अच्छा ही काम होता है। मुहूर्त तो बहुत अच्छा निकाला था नैनी नाथ के ब्याह का, लेकिन ब्याह का नैनी नाथ अलग करेगा राज रामचंद्र जी के दीक्षा का मुहूर्त, राजा अभिषेक का मुहूर्त निकाला लेकिन उसी मुहूर्त में उनको वैराग हो गए, वो बन छोड़ कर बन जाना पड़ा। अब बताओ कौन सा अच्छा मुहूर्त। इसलिए मुहूर्त बाहर आ अपने भीतर का मुहूर्त सुधारो तो दुनिया की मुंह सुधर जाते, हमें तो पूर्ण विश्वास है। मन अच्छा बना लो तो सब काम अच्छा होता है, और तो मन अच्छा नहीं है तो कितने मुहूर्त सामने ले आओ वो कभी भी सफल होते नहीं। तो यहाँ पर मान घमन से अशुचि माटी पिंड से पिंड छुड़ाती हुई कुंभ के रूप में डलती है। पिंड हो गया ना, माटी का लौंडा पिंड था और उससे पिंड छूटा। बोले भैया उनसे तो पिंड छूट जाए, ऐसी तरह महाराज आशीर्वाद दो घर गृहस्थी का पिंड छूट जाए। समझ गया ना, ऐसे कहावत है यहाँ कहते हैं ना, सब पिंड छूट जाए भैया इनसे बड़ी सब पिंड छूटेगा पता नहीं है। हाँ सब पिंड छूटेगा, तो माटी में पिंड से पिंड छुड़ाती हुई वह कुंभ के रूप में डलती है। कुंभाकार कुंभाकार धरती है, कुंभ के धरती के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। वैसे निरंतर सामान रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, आवाजित अपनी गति के साथ फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है जो मान से विमुख होती है, और विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति साथ देती है। जो मान में प्रमुख होती है उत्थान पथन का यही आमुख है। तो सबकी यात्रा चल रही है, सभी 24 घंटे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बिल्कुल कोई हाथ मान करके नहीं बैठा, लेकिन वही हमारे क्रियाओं में जब सन्मति मति बुद्धि साथ देती है तो जीवन में विकास का क्रम होता है। और वही बुद्धि अगर रति माने राग मोह माया कलुष का अगर हमारा साथ देती है तो जीवन में पतन का क्रम जुटता है। और उत्थान पतन में मान में जो प्रमुख है वह निश्चित पतन का कारण बनता है, और जो मान से विमुख है वो निश्चित उत्थान का कारण बनता है। क्रिया तो सबकी चल रही है, जल का बहाव एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं। जो सरिता नदी बह रही है वो बहाव तो चल रहा है, यदि डैम बांध दिया तो पानी बांध बांधने पर पानी की यात्रा कहाँ होने लगती, ऊपर की ओर, और नहीं है तो नीचे की ओर, तो पानी बह रहा है। हमारा मन भी ऐसा है, 24 घंटे कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा है। यदि राग यदि मान कन रति उसको अपन राग अथवा मान कसाए हमारे भीतर है तो मन गलत बात सोचेगा, तो सद्बुद्धि है और मान लीजिए मान से विमुख हमारी परिणति है तो वही मन के विचारधारा हमारे लिए उन्नति का साधन बन जाती है। गति तो सबकी है लेकिन बस हमारी मति कैसी है इस बात पर हमारे जीवन का विकास और पतन आधारित है। कितनी बढ़िया बात सार संक्षेप में, तो सबकी बुद्धि चल रही है लेकिन एक वही खुरापाती करता है, एक वही अपने बुद्धि से अपने आप कल्याण के मार्ग में लग जाता है। रति और मान कसाय अगर हमारे साथ में है तो विनाश का क्रम जुटेगा, और मति सन्मति है और मान कसाय से विमुख है तो वही यात्रा आपकी ऊपर की हो जाएगी। यात्रा तो अबाधित चल रही है, इसमें कहीं कोई विराम वाली बात ही नहीं। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं, अरे जीवन मिला है तो अमृत बना के पिए ना। जीवन को हमने जहर बनाया और हमने अमृत, थोड़ा सा हमारा अज्ञान परिणाम और थोड़ा सा राग बुद्धि से हमने अपने जीवन को जहर बना लिया, और फिर बाद में भजन गाते जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आगे क्या भैया, आगे की देखो, आगे को पीछे को है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना। ऐसा क्यों कहते हैं, ये सोचो कितना पुण्यशाली हम हैं, कि कितने पुण्यशाली हमें जैन, मतलब जिस दुनिया में हम आए हमें मनुष्य पर्याय मिली, फिर हम अमृत बना के क्या ना पिए, तो कितना बड़ा बढ़िया आशा हमारा नहीं। अमृत बनाना हो तो अपनी मति को सन्मति और मान कथा से विमुख करो, अन्यथा वह विनाश के क्रम जीवन में दुष्टे चले जाएंगे। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्रपट से कुंभ को उतारा। इसमें बहुत अच्छा पूरा आगे पर क्रम से कर ही रहे हैं। धरती पर दो तीन दिन का अवकाश मिला तो कुंभ का गीलापन मिटता गया, तो कुंभ का गीलापन सिमटता गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सूत लिया है और एक हाथ में कुंभ को ओट दी है और कुंभ की ओट पर चोट की है। समझ सरल है, हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, तो मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उपनती सी लगती है। परंतु चोट ठोट पर है ना, सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है, तभी तो किसने कुंभ को सुंदर रूप से घोटम घोट किया है, कुंभ का गला ना घोट दिया है। तो भीतर से हाथ लगा के ऊपर चोट लेकर के वह शिल्पी उसको बार बार उस पर चोट कर रहा है, जिससे कि कुंभ की घोट निकल जाए। चोट कहाँ पर है, घोट पर है, कुंभ को नहीं मार रहा क्योंकि कुंभ की खोट को वो दूर करना है, तो चोट करना अनिवार्य है। फिर भी शिल्पी की आंखें सावधानी बरत रही हैं कि कहीं यह कुंभ को किसी प्रकार से बिगाड़ ना हो जाए, तो कुंभ का गला नहीं होता क्योंकि कुंभ को उसने सुंदर रूप प्रदान किया है। ऐसे हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो बिल्कुल मार्क्स का पहली से पांचवी तक एक ही मार्क्स का थे और खूब ध्यान रखते थे कहाँ लड़के को पीटना है, कहाँ मारना है, घर तक पहुँच जाते थे, जो कमजोरी होती तो भीतर से निकालने का प्रयास करते थे। शिक्षा अर्थ तो मिलता था किंतु उसके बाद भी अर्थ ही प्रयोजन नहीं हुआ करता था और विद्यार्थी और गुरु जी का इतना संबंध होता था कि वो हम लोग यदि मार्च का दिख जाए रास्ता बदल दे, इतना डर लगता था सामने अगर मास्ता आते दिख जाए तो गली में घुस जाते थे, क्योंकि वो तो मारते भी थे और अपने हिसाब से जो उनको शिक्षा देनी वो शिक्षा देते थे। उसी का ये प्रभाव है, सुने रहे थे, इसी का भी ये प्रभाव है कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर के भी और वो ज्ञान जो हम लोगों को बचपन में मिल गया वो ज्ञान अभी भी काम आता है। ऐसा तो कह रहे हैं, अब शासन में क्या हो गया, कहीं अति हो गई, कहीं कुछ लोगों ने, अब जैसे शिक्षकों का वो बहुमान नहीं रहा तो किसी ने अति कर दी, तो उसके लिए भी फिर शासन को कहना पड़ा भैया मारो भी नहीं। हाँ वो सभी अति कर रहे ना, दोनों तरफ से अति होने लगी। हाँ बता तो रहे हैं, ये तो अपन लोग क्या, सीधे इसका कारण ये है, पहले पांच सात बच्चे होते थे तो उतनी कोई दस बारह भी होते थे कोई टेंशन, अब दो हैं और इतने लाड़ में उनको सड़ा लिया कि बाद में स्वयं भुगत रहे। पहले हमने बताया ना, नौनों आठ आठ बच्चे ऐसे पल जाते थे पता नहीं चलता था माता पिता को कि भैया कोई घर में है। मास्टर भी ऐसे करते थे कि ठोक पीट के ठीक कर देते थे। अब दोनों इसलिए तुम परेशान हो रहे कि तुमने किसी को छूट दी नहीं। हम तो कहते बढ़िया, आप कह दो मास्टर साहब हाल तुम्हारी, लड़का हमारा, जितनी उधेड़ सको उधेड़ लो, देखो लड़का अगर इंसान ना बन जाए गारंटी हमारी, एक गुरु जी को छोड़ दो। हाँ लड़ गए यार, इनको बच्चों के संस्कार को स्थिर रखने नहीं ना, इसीलिए देखो पहले जैसा हमने देखा बहुत अंतर आ गया, अंतर बहुत आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने यदि बच्चा आपका शिक्षक से नहीं फिट रहा है तो समझे तब इंसान नहीं बनेगा। वो इंसान बनना तो शिक्षक को कह दो भैया तुम हमारे बच्चे को मारो पीटो क्योंकि इंसान बना दो, और जिस दिन गुरु जी तुम्हारे बच्चे को मार दो समझना सबसे बड़ा हमारा हिस्सा यही व्यक्ति है जो कि हमारे बच्चों को सुधारेगा। इसका दुष्परिणाम पूरी समाज भुगत, मतलब पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं। आज बच्चों में जिस तरह से कुछ श्रृंखलता बढ़ रही है, इसका कारण है मम्मी पापा मुंह के कान कह नहीं पाते, और मम्मी तो और चार कदम आगे और दादा दादी तो और उनसे दो कदम आगे। सुनो सर, इसीलिए भैया बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये बात अपने को स्पष्ट है कि भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। जब कुंभकार बिना कुंभ को चोट मारे घट नहीं बना सकता, तो कोई गुरु अगर शिष्य को उन्नत बनाना चाहते तो चोट मारना बहुत जरूरी है। इसलिए इतने लोग यहाँ बैठे, इतने लोग भी मान जाए ना, यदि गुरु उनको कुछ कहता है या पाठशाला में या स्कूल विद्यालय में, तो हम कभी भी उनको उल्टी शिकायत ना करें, बल्कि उनको यह बहुत अच्छा, आप बड़े उपकारी हैं जो कि आपने हमारे बेटे को दो चार हाथ लात लगा दिए। हाथ नहीं, क्या कहा, दो चार लात लगा देना, तब भी वो नहीं सुधरने वाले। पहले हम गुरुकुल में खुरई में होता है नेमी चंडी मारते, तो हमने ऐसे लात मारते थे बच्चों को, तब वो कहीं से डरते थे उनसे, और आज तो लातों के और ऊपर के भूत हो गए, वो लातों से भी नहीं मानने वाले। क्या करोगे, देख लो फिर। चलो, कुछ तत्वोद्घाटन संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सजर हुआ कुंभ पर। जैसे कुंभ बन गया, कुछ उसमें कलाकारी हो रही देखिएगा। कविताओं का सजन हुआ है कुंभ पर, 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आवरण की लगती अंकित हैं, अपना अपना परिचय दे रही हैं। 99 और 9 दो संख्याएं लिखी हैं, मानो कुंडल, कुंभ में कुंडल पहना हो, ऐसी वो संख्याएं लग रही हैं। एक ध्यान संसार की ज्योतक है, एक क्षीर सार की, एक से मुंह का स्थान मिलता है, एक से मुख का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्तर, पर लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने पर 9 ही संख्या शेष रहती है। यथा 99 में 2 का गुणा किया 198, 198, 189, 99, 3, 99, 4 ऐसा गुण संख्या करते चले जाइए, तो 9 तक की संख्या ले जाइए, और 9 की संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुण करने पर भी परस्पर मिलाने पर जो की क्यों 9 ही संख्या रहती है। 9 में 9 का गुणा करो कितना आ गया, 81, 8 और 1 को जोड़ो तो 9। अर्थात कितनी हमें बढ़ती संख्या दिख रही है, लेकिन बढ़ कुछ नहीं रहा, ले देकर के अंत में बचती है 9। 99 की संख्या जो है ये तो घटती है। यथा 9 × 18 = 9, 9 × 3 = 27, 2 + 8 = 9, इसी भांति गुणन क्रम से 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। इसका यही कारण है कि 99 वह विघन माया छलना है, 6 स्वभाव वाली है। 99 की संख्या तो विघ्न है, छलने वाली है, और घट करके 9 ही बचेगा, और अनात्म तत्व की ज्योतनी है। 99 अनात्म तत्व मानी जड़ पदार्थ को प्रकाशित करने वाली है, और 9 की संख्या यह सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधनी है, विस्तरेण अलम। तो संसार 99 का चक्कर है, ये कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए भविष्य मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और भे हो 9, 9 जीवन का स्रोत। ये 2 संख्याएं जो लिखी हैं, 99 की संख्या संसार का प्रतीक है, तो 9 की संख्या मुक्ति का प्रतीक है। अलग ज्यादा विस्तार से विराम हो, विस्तरण विस्तार से आओ, विराम हो ज्यादा क्या समझाना, सांस संक्षेप में आप इतना ही समझ लो, 9 की संख्या संसार को, 99 की संख्या 99 का चक्कर है, कहते ना आप लोग, कैसा चक्कर है 99 का, कि हमेशा एक की आकांक्षा लगी रहती है। 99 रुपए अपने पास हो तो अब व्यक्ति खर्चा नहीं करता, एक और आया तो 100 का बंदा नोट मिल जाएगा। एक कहानी इसमें पड़ी थी कि एक सेठ जी जो थे बढ़िया बिल्डिंग में रहते थे, और उसके बाजू में गरीब व्यक्ति किसान रहता था और उसकी सेठानी कहती देखो ये कितना सुखी है और देखो शाम को 6 बजे आ जा दोनों पति पत्नी बच्चे मिलकर के आराम से भोजन करते हैं बातें करते तुम देखो रात में 10-12 बजे तक तुम्हें फुर्सत नहीं देखो कितना बोले अभी उसको 99 का चक्कर नहीं लगा तो उसने दूसरे ने तो 99 सिक्के रख करके फेंक दिए अब उन दोस्तों अरे 1 रुपए और ज्यादा चाहिए तो सौका पूरा बंदा हो जाएगा फिर उस दिन वो रात में 8 बजे आया फिर आज ओवर ड्यूटी करेगी 1 सिक्का और मिल जाएगा तो मैं अपने 100 कर लूंगा फिर धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी पड़ी कि 99 के चक्कर में कभी 100 तो होता नहीं है लेकिन प्रश्न और बढ़ती चली है तो 99 का चक्कर छल है माया है दुखी करने वाली 9 शाश्वत है अर्थात 9 का अंक 9 बार नमोकार मन पढ़ो 108 बार 36 बार 27 बार अंत में 9 का अंक ऐसा जो कभी भी नष्ट नहीं होता 9 जीवन का स्रोत है इसलिए ध्येय हमेशा 9 का अंक हो जो 9 जीवन 99 नहीं जीवन में 9 को धारण करे। कुंभ के कंठ पर एक संख्या और अंकित है वह है 63 जो पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है हमें इसकी यह विशेषता है कि 6 के मुख को 3 दिख रहा है और 6 को सम्मुख दिख रहा है 3 एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर भाग लेना सज्जनता की पहचान है हिंदी में देखो 6 और 3 हाँ एक दूसरे को मुखाने से लिखाते हैं औरों के सुख को देख जलना औरों के दुख को देख खिलना ये दुर्जनता का सही लक्षण है। जब आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब 63 का विलोम परिणमन होता है यानी 36 का आगमन होता है। 3 और 6 दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है विचारों की प्रकृति ही विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति को उल्टी करवट दिलाती है कला संगल खिल जाता है परस्पर फिर क्या कहना 36 के आगे 1 और 3 की संख्या जुड़ जाती है कुल मिलाकर 363 मतों का उद्भव होता है जो परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे होते जिनका दर्शन सुलभ है आज धरती पर। तो 63 और 36 दो संख्या और लिखी है 63 की संख्या सज्जनता का प्रतीक है तो 36 की संख्या दुर्जनता का प्रतीक 36 एक दूसरे को पीट करके बैठे हैं तो 63 एक दूसरे को मुख करके बैठे हैं एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना तो सज्जनता है और एक दूसरे के पीट करके बैठ गए तो यह 36 का आंकड़ा हो गया। अब मृत्यु फिर 1-3 और आगे लगा दिए 363 मत 36 से आगे 1-3 और लगा देंगे तो 363 मत की उत्पत्ति हुई जो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आते से लिखा 6 से आगे 3 हो विश्व शांति का ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का 63 करते यहाँ पर ये भी आदर्श पुरुष महापुरुष है उनका आदर्श हम अपने जीवन में हमेशा आगे रखें तो हमारे लिए जीवन में विकास का क्रम दुखता चलेगा। आदर्श पुरुषों की परंपरा जब हम भूल जाते हैं इसलिए आचार्य महाराज बार बार कहते हैं कि पुराण ग्रंथ वगैरह जो है महासतियों की कथाएं और महापुरुषों की कथाओं को भी सत्संग कथा जगतान दुरितान होती ऐसे कथाएं भी पढ़ लेना की महासतियों की कथाएं कि कैसे कैसे उनके जीवन में उत्तर संकट आए किंतु उन्होंने अपने शील व्रत को नहीं छोड़ा। ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने अपने जीवन में कितने उत्सर्गों को सहन करके संयम आदि को धारण किया और मुक्ति का लाभ प्राप्त किया तो 63 सलाका पुरुष होते हैं। इन 63 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र जो है वो हमारे लिए उन्नति का साधन बनता है। तो 63 की संख्या यही बात आपको समझाती है। ऐसे नाटक बहुत होते अभी मैना सुंदरी चंदन बाला और सोमा सती मैना सुंदरी ऐसे मतलब पुरुष भी यही नाटक करते थे जी स्त्री बन जाए मैना सुंदरी बन जाए और ये बन जाए पहले तो वही हाँ जी बढ़िया स्त्री जैसा हाँ तू साड़ी वाड़ी पहन देते थे आप क्या पहन अभी वैसे कुंभ साई ने वहाँ कराया था बताते इस बार पिछले साल जो पासोदा में उन्होंने परिसर में 10 दिन एक ही कार्यक्रम रखा और मैना सुंदरिका को उनका सुंदरिका नाटक था, उन्होंने 10 दिन प्रति एक घंटा अंत में उसकी रियल पूरे 10 दिन तक वो सीरियल चला था और लोगों ने आज जो देखा कल की खूब मतलब उसमें पॉपुलर रहती थी। सेवा जो प्रतियोगिता वगैरह कराते रहते ना अब इसमें एक बदल वो, लेकिन इस बार नया बांसों का वाले बता रहे थे 10 दिन एक ही कार्यक्रम चला उसको अच्छे तरीके से किया तो लोगों को पुरानी स्मृति हो आई और वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से। हाँ पहले ऐसे चलते थे, अब तो 8 घंटे टाइम ही होगी बस। हाँ चलिए, कुंभ और कुंभ पर हुआ वह सिंह और श्वान का चित्रण भी बिना बोले ही संदेश दे रहा है। दोनों की जीवन चर्या शान परस्पर विपरीत है। पीछे से कभी किसी पर धावा नहीं बोलता सिंह, गरज के बिना गरजता भी नहीं और बिना गरजे किसी पर बरसता भी नहीं, यानी मायाचार से दूर रहता है सिंह। परंतु श्वान सदा पीछे पीठ पीछे से जा काटता है, बिना प्रयोजन जब कभी भोगता भी है और जीवन सामग्री हेतु दीनता की उपासना कभी नहीं करता सिंह, जबकि स्वामी के पीछे पीछे पूछ हिलाता श्वान फिरता है एक रोटी के लिए। सिंह के गले में पट्टा बन नहीं सकता किसी कारणवश, बंधन को प्राप्त सिंह पिंजरे में ही बिना पट्टा ही घूमता रहता है। उस समय उसकी पूछ ऊपर उठी तनी रहती है, अपनी स्वतंत्रता स्वाभिमान को किसी भांति व आज आने नहीं देता वह, और श्वान स्वतंत्रता का मूल नहीं समझता। पराधीनता दीनता श्वान को चुभती नहीं कभी, श्वान के गले में जंजीरी आवरण का रूप धारण करती है। उसमें कुत्ता बनाया और एक सिंह बनाया, ये दोनों अपनी अपनी प्रवृत्ति को बता रहे हैं। एक और विशेष बात है कि श्वान को पत्थर मारने से पत्थर को ही पकड़ कर काटता है, मारक को नहीं, किंतु सिंह विवेक से काम लेता है, सही कारण की ओर ही उसकी सदा दृष्टि जाती है। मारक ऊपर मार करता है वह। श्वान शब्द का संस्कृति की इसलिए भी निंदा होती है कि वो अपनी जाति को देखकर धरती खोदता गुर्राता है। सिंह अपनी जाति में मिलकर जीता है, राजा की वृत्ति ऐसी ही होती है और होनी ही चाहिए। कोई कोई श्वान पागल भी हुआ करते हैं और वे जिसे काटते हैं वह भी पागल हो श्वान सम भोगता हुआ नियम से कुछ ही दिनों में मरता है, परंतु कभी भी यह नहीं सुना कि सिंह पागल हुआ हो। श्वान जाति का एक और अति निंद कर्म है, जब सदा से पीड़ित हो खाद नहीं मिलने से मल पर भी मुंह मारता है वह, और जब मल भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु सिंह विष्ठा का सेवन नहीं करता, ना ही अपने सत्याग्रह शिशु का भक्षण। बताते हैं कि जो बच्चों को जन्म देती भूख लगती तो अपने बच्चों को ही खा जाती है। इसी प्रकार से श्वान की दो तीन विशेषताएं यहाँ पर सिंह और श्वान में अंतर बता दिया कि सिंह हमेशा मायाचार से रहित होता है तो कुत्ता मायाचार करता ही रहता है। ये पिंजरे में रहने के बाद भी पूछ उठा करके स्वतंत्रता से जीता है तो उसके गले में अगर चैन पट्टा भी डाल दो तो उसका में बढ़िया आभूषण पहना हुआ मालिक के पीछे पीछे, इसको पत्थर मारो तो पत्थर को पकड़ता है, क्योंकि सिंह को पत्थर मारो तो पत्थर मारने वाले को पकड़ता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की ऐसी प्रवृत्ति हुआ करती है। सम्यक दृष्टि मूल कारण को पकड़ता है तो मिथ्या दृष्टि निमित्त कारण पर ही टूट पड़ता है। श्वान अपनी जाति को देखते घुर्राता तो सिंह अपनी जाति में मिलकर रहता है। श्वान तो भले पागल हो जाए तो सिंह कभी भी पागल नहीं होता, और यह बता दिया मन नहीं कुछ नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही पा जाता। वही कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत कर रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक पहुँचा है जा चुका है, और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है, कारण विदित ही है। एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी, प्रमाद पथिक का चरम शत्रु है। कछुआ खरगोश पहले दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, दोनों में रेस हुई तो कछुआ सो गया, नहीं खरगोश सो गया और कछुआ भी धीरे धीरे चलता रहा, लक्ष्य पहुंच गया। इसलिए प्रमाद प्रतिष्ठा परम शत्रु, कई लोग मन बना रहे हैं आ तो सकते हैं लेकिन अब वो कहा करें, सोवे को कहेंगे तो यही है नहीं आ पा रहा, या थोड़े से लेटे लग गई तो सारे बड़ी हफ्ता जाने होता। तो प्रमाद प्रतिष्ठा परम शत्रु है। कुछ दर्शक को दर्शक को दर्शन होता है कुंभ के मुखमंडल पर, सी और भीम दो अक्षरों का, सी और भी दो अक्षर उसमें लिखे हैं, ये दोनों बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ही एकांतवाद का समर्थक है तो भी अनेकांतवाद त्यागवाद का प्रतीक है। हम ही सब कुछ है यू कहता है जी सदा, क्या कहता हम ही सब कुछ है, तुम तो कुछ नहीं हो, और भी का कहना है हम भी हैं, तुम भी हो, सब कुछ। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, तो भी देखता है समीचीन दृष्टि से सब कुछ। ही वस्तु की शक्ल को पकड़ता है तो भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता। ही पश्चिमी शब्द का है तो भी है भारतीय संस्कृति भाग के विधाता। रावण था ही का उपासक और राम के भीतर ही बैठा था, यही कारण है कि राम तो उपास हुए हैं रहेंगे आगे भी। जी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य है किंतु भीड़ नहीं, भी तो लोकतंत्र की नींव है। आप भी तो सब लोग जुड़ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन भीड़े तो लोकतंत्र की भीड़ है, बिना इसके लोकतंत्र चलने वाला लोक में लोकतंत्र की नींव यानी घोंसला तब तक सुरक्षित है जब तक भी सांस लेता रहेगा। भी से स्वच्छता मदानता मिटती है, स्वतंत्रता के स्वप्न साकार होते हैं, सद विचार सदाचार के बीज भीने हैं, हीने नहीं। प्रभु से प्रार्थना है कि भी से हीन हो जगत, यह अभी हो या कभी हो, किंतु भी से शक्ति भेंट हो जाए, अर्थात ही हटाग्रह छूट जाए और सद्भावना सबके भीतर पैदा। कर पर कर दो के कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे धबले भविष्य हेतु प्रभु की आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तो सांस फूटे, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो बच जाओगे, अन्यथा मेल में अंध हो जेल में बंद हो बच जाओगे। एक कविता लिखी कर पर कर, जैसे भगवान हाथ पर हाथ रख के बैठ गए ना, कर पर कर दो तो आप संसार के दुखों से बच जाओगे अन्यथा बच जाओगे। अब ये ऐसा नहीं कर सकते तो जो मुनि श्रमण बने उनके कर पर अपना कर कर दो, अथवा साधु नहीं बन सकते तो श्रावक बन के दान धर्म में प्रवृत्ति करो। मरहम बने, यह चार शब्दों की कविता भी मिलती है यही कुंभ पर। इसका आशय यही हो सकता है कि कितना कठिनतम पाषाण जीवन रहा हमारा, कितने पतित जन होकर खा गए थे, रुक गए गिर गए, पद को छोड़कर फिर गए कितने, फिर कितने पर लहू लुहान हो गए, कितने गहरे घावदार बन गए वे, समुचित उपचार कहाँ हुआ उनका, होता भी कैसे पापी पाषाण से, उपचार का विचार बस आज उभरा इसमें, यह अभी सुवक्ता का संकेत है, इससे आगे पर बढ़ना संभव नहीं। प्रभु यही प्रार्थना है कि पतित पापी की इस जीवन में ना सही, अगली पर्याय में तो मर हम बने। ये जीवन में हम किसी का उपकार नहीं कर सकते, जो ऐसी पर्याय हमें मिली, ऐसी अवस्था मिली है कि हम दूसरों के उपकार की सोच ही नहीं सकते, तो भगवान इस जन्म में मर करके अगला जन्म ऐसे मिले कि हम भी दूसरों के लिए मलहम के समान या उपकार का कार्य कर सके। चार अक्षरों की एक और कविता मैं दो गला, इससे पहला भाव ये निकलता है कि मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ बाहर से कुछ और पहने जिस बोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है मैं दोगला, दोगला माने खड़ी दूत मायावी हूँ, अज्ञान मान के कारण ही धर्म को छुपाता आया हूँ, जिस कटु सत्य को सब हिते तुम भी स्वीकारो। अपना हित चाहते हो किसमें है और उसका तीसरा भाव क्या है, पूछने की क्या आवश्यकता है। सब विभाव बिताने की जड़ मैं यानी अहम को दो गला समाप्त कर दो। मैं दो गला। इस प्रकार से कोमल जो कविता लिखी थी उसका संक्षेप आपको बता दिया, और किसी को विशेष जानने की इच्छा हो तो अलग से पूछ लीजिएगा तो समझा देंगे। चलिए वाणी से जानते तुझे लोकानी जिन वाणी बारती तो जो दिन रहेंगे तेरा सुनना है। जीव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन गया।